ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद आठवां अध्याय, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक संख्या 82। श्री भगवान उवाच, मा भैष्ट बालम तपसः दुरत्ययात् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतः हि वह प्राणनिरोधः आसीत् औत्तानपादिः मयि संगत आत्मा। श्री भगवान उवाच, मा भैष्ट बालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीद औतान पादिर्मयि संगतात्मा। भगवान उवाच, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मां भैष्ट मत डरो, बालम बालक ध्रुव, तपसः कठिन तपस्या से, दुरत्ययात दृढ़ निश्चय, निवर्तयिष्ये रोकने के लिए कहूंगा, प्रतियात तुम जा सकते हो, स्वधाम अपने घर, यतः जिससे, ही निश्चय ही वह तुम्हारा प्राण निरोधः प्राण वायु का अवरोध आसीत हुआ, औत्तानपाद ही राजा उत्तानपाद के पुत्र के कारण, मई मुझको संगत आत्मा मेरे विचार में पूरी तरह लीन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो तुम इससे विचलित न होवो, यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो, मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से उबर सकोगे। तात्पर्य, यहां पर प्रयुक्त एक शब्द संगतात्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया गया है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्म परमेश्वर के परम आत्म से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहां पर श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। इस कथन से मायावादी दार्शनिकों के इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, अपितु परमात्मा श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार जिस तरह की पौधे की जड़ को सींच कर टहनी पत्ती आदि को तुष्ट किया जाता है, यदि मनुष्य श्री भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। सभी देवता श्वासरोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु भगवान ने विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं, वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अनुवाद को दोहराइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो, तुम इससे विचलित न होवो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर सकोगे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब भी देवताओं को कोई कष्ट होता है तो वो सीधे भगवान के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों के लिए भगवान के सिवाय और कोई आश्रय नहीं होता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, आध्यात्मिक धाम के, सारे जीवों के आश्रय हैं, लेकिन केवल भक्त इस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं और भगवान का आश्रय लेते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो असुर हैं, वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। हालांकि भगवान उन सब के आश्रय हैं, फिर भी नहीं लेते हैं। तो भक्त इस चीज को पहचानते हैं। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वय दौर्भिर अस्यन्न धर्मम। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी भगवान को जननिवास करके पुकारते हैं, अर्थात जो सारे ब्रह्मांड, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सारे प्राणी हैं, सारे जीव हैं, जन उनके निवास स्थान है वो। या तो फिर यह भी अर्थ होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो साधारण जनों के बीच में निवास कर रहे थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह है। जैसे जब वृंदावन में आए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो एक साधारण बालक की तरह व्यवहार कर रहे थे, जब द्वारका में रह रहे थे एक साधारण मनुष्य की तरह रह रहे थे, वृष्णि वंश में, यदुवंश में। और यदुवंश में किसी ने यह नहीं सोचा कि यह भगवान है। तो इस प्रकार से जन निवास के दो अर्थ होते हैं, सारे प्राणियों के निवास स्थान और जो प्राणियों के बीच में साधारण प्राणी की तरह रहते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों करते हैं, सारे ब्रह्मांडों को आश्रय भी देते हैं और ब्रह्मांड में अवतार लेकर सारे प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, उनको संग भी देते हैं, उनका मन उनकी ओर आकर्षित कर देते हैं। तो देवतागण इस चीज को पहचानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय लेते हैं। और यहां पर जब वो कष्ट में आए हैं तो भाग के गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया बंद होती जा रही थी और उनको सांस लेना भी कठिन हो रहा था। तो जाके जब शिकायत करने लगे तो भगवान ने कहा कि चिंता नहीं करो, श्वास क्रिया सारे ब्रह्मांड का बंद होने का कारण यह है कि उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसी कड़ी तपस्या की है कि उसके दृढ़ निश्चय की वजह से सारे प्राण वायु उसने अपने भीतर आकर्षित कर दिया है और इस वजह से ब्रह्मांड में सारी श्वास क्रिया ही प्रायः बंद हो चुकी है। तो मैं अभी जाऊंगा ध्रुव महाराज के पास में और बताऊंगा कि ऐसा करना उचित नहीं है तुम्हारे लिए और जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं मैं पूरी कर दूंगा। इसलिए आप देवतागण सब अपने अपने घर चले जाओ, अब यहां चिंतित होकर मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ देखभाल कर लूंगा। जैसे कभी प्रजा जब विचलित हो जाती है कष्ट के मारे तो वो राजा के पास चली जाती है और राजा के सामने अपनी समस्या रख के वो राजा से कहते हैं कि आप इस समस्या का समाधान करो, और फिर राजा कहते हैं ठीक है, आप लोग अपने अपने जगह चले जाना, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी राजा के समान है और सारे जो प्राणी हैं वो प्रजा के समान है। तो ये बताया जाता है, कई लोग कहते हैं जैसे मायावादी दार्शनिक, जिस प्रकार से इनका उल्लेख यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सारे जीव एक हैं भगवान से, भगवान में और जीवों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी भी समझाते हैं अपने तात्पर्यों में, ग्रंथों में, कि भगवान राजा के बराबर है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी हैं। तो राजा अगर कोई है, उसका कोई प्रजा नहीं है, तो फिर वो कैसा राजा हुआ? राजा मतलब प्रजा होना चाहिए, प्रजा के बिना राजा राजा नहीं कहलाता, राज्य के बिना राजा राजा नहीं कहलाता। तो ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान है, सारे स्वामी हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, तो उनकी प्रजा भी होनी चाहिए, प्रजा जो है उनका पृथक अस्तित्व भी होना चाहिए। अगर प्रजा भी राजा है तो राजा किसके ऊपर राज करेगा? अगर हरेक आदमी राज्य में राजा का हो जाएगा, हरेक प्रजा का आदमी भी राजा बन जाएगा, तो फिर कैसी अवस्था होगी? तो इसलिए प्रजा में जो अलग अलग जो व्यक्ति हैं, उनका अलग अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है भगवान से और एक दूसरे से। और भगवान श्री कृष्ण राजा है, विष्णु के रूप में राज करते हैं। इसीलिए यहां पर हमें जानना है कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु खास करके, ये भौतिक जगत में उनका स्थान क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का रूप धारण करते हैं इस ब्रह्मांड का पालन पोषण करने के लिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भौतिक जगत के सारे बद्ध जीव का देखभाल करना भी, ये भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपने आप को विस्तार करते हैं और विष्णु के रूप में आते हैं। जिस प्रकार से अगर सरकार जो है वो प्रजा का देखभाल करती है, अगर सरकार कहे कि हम केवल उन लोगों का देखभाल करेंगे जो कानून के हिसाब से चलते हैं, जो गुनहगार हैं उनका देखभाल हम नहीं करेंगे, तो क्या ये हो सकता है? जो गुनहगार हैं सरकार उनको जेल में डालती है, और जेल में डालने के बाद में सरकार भी उनका देखभाल करती है। सरकार एक अलग मंत्री को उस डिपार्टमेंट के लिए उनको चुनती है, फिर वहाँ जेल के वार्डन होते हैं, वहाँ इतने सारे सिपाही होते हैं, इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को। तो सरकार ये नहीं सोचती कि उनके बारे में हम भूल जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी बद्ध जीवों को भूल नहीं जाते हैं, हमेशा उनका ख्याल करते हैं, और विष्णु के रूप में अवतार लेकर सारे भौतिक ब्रह्मांड को संभालते हैं। और इतना ही नहीं, हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में वो साथ देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानाम यंत्रारूढानि मायया। कि मैं सारे प्राणी के हृदय में भ्रमण करते रहता हूं उनके साथ में, और भ्रमण का निर्देशन मैं करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमेशा जीवों के साथ में रहते हैं, और जीव अगर केवल भगवान की ओर मुड़ के देखे और भगवान का आश्रय ले, तो उसके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो देवतागण अभी भगवान के पास गए हैं आश्रय लेने के लिए कि हमारी समस्या का समाधान आप करो। और इस समय भगवान कहते हैं कि ठीक है, ध्रुव महाराज के पास हम चले जाएंगे, तपस्या बंद करा देंगे और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम सारे समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। यहां दृष्टांत भी दिया हुआ है, जो इस दृष्टांत को हम बार बार सुन चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका आचरण करना हम भूल जाते हैं। और वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है, हमारे सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। तयोर अपि मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम सर्वारहणम अच्युतेज्य। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, तयोर अपि मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। जिस प्रकार से तथा तयोर, जिस प्रकार से मूल हम तयोर मतलब तरोर मतलब तरु वृक्ष, जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में मूल निषेचने न हम जल डालते हैं, तब क्या होता है? स्कंद भुज उपशाखा, सारे जो स्कंद हैं, पत्ते हैं, सब पानी से उनको पानी मिल जाता है। जिस प्रकार से प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणा, पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां, सारे प्राण को शक्ति मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से तथा सर्वारहणम अच्युतेज्य, ठीक उसी प्रकार से भगवान की पूजा अच्युत, श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से सर्वारहणम सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है, सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा एकमात्र कार्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर हम दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे कि इनको प्रसन्न करने से हमारी ये समस्या का समाधान होगा, उनको प्रसन्न करने से दूसरे समस्या का समाधान होगा, तो ऐसे नहीं होगा। मूल समस्या का समाधान क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करो। सबको प्रसन्न करने जाएंगे, किसी को भी प्रसन्न नहीं करेंगे, सबको नाराज करेंगे और किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, उल्टे समस्याएं बढ़ जाएंगी। वो गधे की कथा कहानी मालूम है ना आपको, कि एक बार एक बाप और बेटे, बाप बेटे दोनों गधा खरीदने गए, गधा खरीद लिया और फिर गधे को ले जा रहे थे, बाप एक ओर गधे के, बेटा दूसरी ओर, और चलते चलते जब जा रहे थे तो थोड़े लोग वहां खड़े थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया, कहने लगे कि देखो इतना अच्छा हट्टा खट्टा घोड़ा जो है उन्होंने खरीदा है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसके ऊपर बैठ नहीं रहा है, दोनों चल रहे हैं, गधे को भी चला के ले जा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ गधा खरीदने का? तो बाप बेटे ने सोचा कि हाँ सही बात है, तो हम में से किसी एक को बैठना चाहिए, तो बेटा बैठ गया। तो चलते चलते जा रहे थे तो आगे और एक थोड़े लोग मिल गए, कहने लगे कि अरे देखो ये नौजवान बेटा है, स्वास्थ्य इसका इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना क्रूर है, खुद आराम से बैठ के जा रहा है और बूढ़े बाप को चलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये जब सुना कि बाप बेटे को बहुत बुरा लगा, तो बेटे ने कहा कि मैं उतर जाता हूँ, आप बैठ जाओ। तो पिताजी ऊपर बैठ गए और बेटा चल रहा था। चलते 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 आगे गए तो और थोड़े लोग मिले, वो कहने लगे कि अरे रे 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 देखो ये बाप ने सारे जीवन भर आराम कर लिया, ऐश कर लिया, अभी भी ऐश करना चाहता है, बेटा इतना परिश्रम कर रहा है, बेटे के लिए कोई जगह नहीं रख रहा है। तो पिताजी को बहुत बुरा लगा, तो पिताजी उतर गए वहां से, कहने लगे अब क्या किया जाए। तो पिताजी बेटे ने सोचा और निर्णय लिया कि हम दोनों ही बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठ गए, तो अब तो कुछ कोई नहीं कह सकता, तो दोनों बैठकर गधे को चलाकर ले जा रहे थे और चलते चलते वहां और थोड़े लोग मिल गए। अरे रे रे देखो ये गधे को कितना कष्ट दे रहे हैं, दोनों लोग एक गधे के ऊपर बैठ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि गधे को कितना दर्द होता होगा, देखो कितने क्रूर हैं ये लोग। तो ये दोनों अभी बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। फिर दोनों नीचे उतरे, सोचा चलो समस्या का समाधान एक ही तरह से हो सकता है। दोनों ने गधे को उठाया, अपने कंधे में रख दिया और बाप बेटे ने आधा आधा वजन ये करके आगे चलते गए। तो ये हालत हो जाती है, हम सबको प्रसन्न करने जाते हैं, सोचते हैं कि इनको प्रसन्न करेंगे तो ये समस्या का समाधान होगा, उनको प्रसन्न करेंगे वो समस्या का समाधान होगा, अंत में क्या होता है? किसी का भी समाधान नहीं होता है, कोई संतुष्ट हमसे नहीं रहते हैं, सब लोग हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारा काम भी नहीं होता, हमें जो करना चाहिए वो तो होता ही नहीं है, साथ साथ दूसरे कोई प्रसन्न भी नहीं होते हमारे ऊपर, ना इधर के ना उधर के रह जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। समाज को प्रसन्न करेंगे, रिश्तेदारों को प्रसन्न करेंगे, इनको प्रसन्न करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, नहीं चलेगा। कृष्ण को प्रसन्न किया तो बस ठीक है। और कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं वैष्णव को प्रसन्न करने से, गुरु को प्रसन्न करने से। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो इस प्रकार से वैष्णव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यही हमारा सब कुछ है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भी वैष्णव हैं इसलिए सबको, सबका कर्तव्य है कि हमें प्रसन्न करें, तो सबको हमारी सेवा करनी चाहिए। नहीं, हमें यह सोचना चाहिए कि बाकी दूसरे वैष्णव हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। और ऐसे सेवा की भावना रखने से अगर दूसरे वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो फिर अवश्य कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन वैष्णवों को भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भौतिक कार्य से प्रसन्न हो। हमने 6-8 वैष्णवों को साथ में लेकर सिनेमा दिखा दिया और वैष्णव प्रसन्न हो गए, सोचा चलो वैष्णव को खुश कर दिया हमने, ये नहीं होता। वैष्णव को खुश करना मतलब भक्ति में खुश करना। और वैष्णव भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो सिनेमा दिखलाकर खुश हो जाए, ऐसे इस तरह से खुश करने की बात नहीं है। उनकी सेवा करके उनको भी प्रेरणा देना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे करने से भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदियानाम समर्चनम। शिवजी पार्वती देवी को बताते हैं कि आराधना तो कई प्रकार के होते हैं यह संसार में, लेकिन आराधनानाम सर्वेषाम सबसे ऊंचा ऊंची आराधना कौन सी है? विष्णु। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम, परम आराधना विष्णु की आराधना है। लेकिन तस्मात परतरम देवी, हे देवी इससे भी परतर, इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंची एक आराधना है, और वो कौन सी है? तदियानाम समर्चनम, उनकी अर्चना, उनकी सेवा। किनकी? तदियानाम, जो भी भगवान विष्णु से संबंधित है उनकी सेवा करना विष्णु की सेवा से भी ऊंचा माना जाता है। तो विष्णु से संबंधित कौन है? उनका धाम, उनकी लीला, लेकिन सबसे प्रमुख उनके भक्त। अर्थात शिवजी ये कहना चाहते हैं कि जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं वो सेवा विष्णु की सेवा से भी परम होता है। अगर कोई भक्त हमें विष्णु की सेवा से दूर ले जाए तो फिर वो सेवा सबसे ऊंची सेवा नहीं कहलाती। किसी ने कंठी माला पहना है, तिलक पहना है, तिलक है कपाल के ऊपर, कभी कभी माला भी करता हो, लेकिन वो हमें कृष्ण से दूर ले जा रहा हो, तो ऐसे वैष्णव की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसी सेवा सबसे ऊंची सेवा नहीं कहलाती। लेकिन वैष्णव की सेवा करना, तो हर वैष्णव का कर्तव्य है कि दूसरों को कृष्ण के और करीब ले जाना। जैसे जब बलि महाराज ने देखा कि शुक्राचार्य उनको विष्णु के शरणागति से दूर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? शुक्राचार्य को क्या किया? त्याग कर दिया। तो उसी प्रकार से कोई वैष्णव हमें कृष्ण के से दूर ले जा रहे हैं, चलो सिनेमा लाओ, चलो प्रजल्प करो, तो फिर ऐसे वैष्णव की सेवा नहीं हमें करनी है, सम्मान करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। लेकिन हमें ऐसे वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम दूसरों को कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्साह दिलाएं, प्रेरणा दिलाएं। तो इस प्रकार से हमारी वैष्णव समाज अच्छी तरह से चलेगी। तो ये वैष्णव सेवा सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी वैष्णव सेवा है दूसरों को कृष्ण भक्ति में प्रेरणा देना। तो इस प्रकार से हमारे सारे कष्ट, सारे कठिनाइयां दूर हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे जो भी वांछाएं हैं भक्ति में वो भी पूरे हो जाएंगे। भक्ति में ही नहीं, आपकी कोई भौतिक इच्छाएं वो भी कृष्ण पूरे कर देंगे। लेकिन ऐसे ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, भौतिक इच्छाएं प्रयास करना चाहिए कि कोई भौतिक इच्छा न रहे, लेकिन फिर भी रहना ही है भौतिक इच्छा तो कम से कम तो रखिए, ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार से यहां फॉर्मूला बता रहे हैं भगवान कि कैसे देवता गण आए हैं इनके समस्या का समाधान कराने के लिए, और भगवान ने उनको आश्वासन दिया, ठीक है आप कोई चिंता नहीं करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो उसी प्रकार से ऐसा ही आश्वासन भगवान भक्तों के संग से देते हैं। जब तक हम भक्तों के संग में हैं कोई चिंता नहीं, भक्तों के संग में हमें वो आश्रय मिलेगा, हमें वो शांति मिलेगी। लेकिन जब हम भक्तों का संग छोड़ के जाते हैं, भक्तों के संग को साधारण मानते हैं, भक्तों को साधारण मानते हैं, तो फिर उस दिन से हमारी असुरक्षता का पल आरंभ हो जाता है। जब तक हम भक्तों के संग में हैं सुरक्षित हैं, इसलिए भक्तों के संग में हमेशा हमें रहना चाहिए। ये भक्तों का संग कितना मूल्यवान है इसको हमें समझना चाहिए। भले ही हमें दूसरों में दोष दिखे न दिखे, फिर भी बहुत मूल्यवान है और इस चीज को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। और साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, हमारी साधना अच्छी रखनी चाहिए और वैष्णवों से के साथ में प्रेम से रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? तो आज दोपहर को महाराज यहाँ नहीं आएंगे जैसे पहले प्रोग्राम था, क्योंकि महाराज का कल का कार्यक्रम लेट हुआ कोल्हापुर में, तो वहाँ से फोन आया कि सुबह का कार्यक्रम भी वहाँ लेट करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा आपके कोई प्रश्न है तो हमारे प्रश्न है, आपको याद है ना सिस्टम चालू किया था हमने, सब भूल गए कि है? तो इस आज के प्रवचन में आपने क्या क्या सुना बताते जाइए एक एक करके। अरे एक भी हाथ ऊपर नहीं। सब देवतागण चिंतित होते हैं, क्यों चिंतित होते हैं? श्वास क्रिया सारे ब्रह्मांड में बंद हो जाती है, कम प्राय बंद हो जाती है, इसलिए भाग के विष्णु के पास जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। देवता भी भगवान के भक्त हैं इसलिए भगवान का आश्रय लेते हैं, ठीक है। और दूसरे लोग क्या करते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है? वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, किसी और का आश्रय लेते हैं। बोलो। हाँ वो बोले वो जब कष्ट में होते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं। और सारे समस्याओं का समाधान है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें, और सबको प्रसन्न करने जाएंगे तो समस्या का समाधान तो होगा नहीं, लेकिन समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आप सबको इनका अनुभव है कितने लोगों को इस बात का अनुभव है? हाथ ऊपर कीजिए। हमको तो है। तो ये बात आज याद में रखिए, आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। क्या है? और दो तीन भक्त इसी बात को बोलिए, आज के क्लास का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना क्या, यही सबसे बड़ी समस्या है? सॉरी, सबसे बड़ी समस्या का हल है। अच्छा, गलती हो गई। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ी समस्या का हल है। नहीं तो हम सोचते हैं तो बड़ी समस्या ही है, उठो सुबह भगवान के सामने जाओ, जाप करो, कीर्तन में जाओ, समस्या है। समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है। और कौन से पॉइंट सुने आपने? भगवान के भक्तों का सेवा करना ही सबसे ऊंची सेवा है। लेकिन भक्तों की सेवा करना मतलब, भक्तों को प्रसन्न करना मतलब क्या है? कृष्ण के ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, ये सेवा है। ना कि भौतिक चीजों में उनको ज्यादा आकर्षित करा देना, जैसे सिनेमा ले जाना, टीवी दिखाना और प्रजल्प करना, ये सब नहीं। और केवल भगवान के भक्तों के निवास स्थान नहीं है, सारे जीवों के, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निवास स्थान है वो। सबसे ऊंचे आश्रय है, इसलिए उनका नाम जन निवास है। और दूसरा मतलब क्या है? एक साधारण व्यक्ति की तरह आकर साधारण व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको जन निवास कहते हैं। और तो भगवान की तुलना एक राजा से की गई है, एक दृष्टांत है ये। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से राजा हो तो प्रजा होनी चाहिए, उसी प्रकार से भगवान है तो जीव होने चाहिए। क्यों? क्यों? अगर प्रजा नहीं है तो राजा बनने का मतलब क्या है? अकेला मैं राजा हूं लेकिन प्रजा नहीं, तो क्या मतलब? तो इसीलिए क्या होना चाहिए? भगवान है तो जीव होने चाहिए। इसके बारे में मायावादी लोग और क्या विचार है? जीव ही भगवान है, इसलिए जीव में भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो कहते हैं। लेकिन भक्ति की दृष्टि से हम क्या कहते हैं? जीव और भगवान का अस्तित्व क्या है? एक है कि अलग है? पृथक है, अचिंत भेदा भेद तत्व, एक भी है अलग भी है, लेकिन अस्तित्व पृथक है, अलग है। क्यों है अलग? जैसे प्रजा और राजा, उसी प्रकार से जीव और भगवान। ये दृष्टांत सबको याद रहेगा। और कौन सी बात सुनिए? जरूरत नहीं रहने पर भी भगवान कृष्ण को भी जरूरत नहीं रहने पर भी उसके आध्यात्मिक जीवन करने के लिए उसको सम्मान करने के वास्ते विष्णु के रूप में। भौतिक जगत को संभालने के लिए श्री कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने क्या कहा था कि जिस प्रकार से बोलो को किसने कहा? जिस प्रकार से बोलो बोलो क्या है? बोलो, बोलना चाहिए।
बोलना चाहिए, इसमें गलती भी हो जाए तो क्या है, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए सबको। भक्त बाहर से लोग पूछेंगे क्या सुना भगवद गीता में, मंदिर में जाके क्या सुनते हो, कुछ बताना चाहिए। हाँ यही पॉइंट को बताना। जैसे कि हाँ, जैसे सरकार ये नहीं कहती है कि ये लोग गुनहगार हैं तो उनको डुबा दो सागर में या चांद पे भेज दो रॉकेट में डाल के, जेल में डालती है, लेकिन जेल में भी देखभाल करते, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। हाँ, भले 5-स्टार होटल का भोजन ना खिलाते हो लेकिन खिलाते पिलाते हैं, तो वो भी देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, बद जीव जो उनके खिलाफ है, उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, स्वतंत्र भावना रखते हैं, भगवान को त्यागना चाहते हैं, ऐसे जीवों को भी क्या करते हैं भगवान, देखभाल करते हैं। और उनका देखभाल करने के लिए क्या करते हैं भगवान, विष्णु का रूप धारण करते हैं और भौतिक जगत को बनाते हैं, जैसे सरकार जेल को बनाती है। और हाँ, और परमात्मा होकर हर एक जीव के साथ में रहती है भगवान। क्या ये हमारे लिए संभव है, भौतिक क्षेत्र मानव क्षेत्र में क्या ये संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री हर एक गुनहगार के साथ में जा सकते हैं जेल में, अपने आप को कितने सारे गुनहगारों के साथ में विस्तारित करके, लेकिन भगवान जा सकते हैं। हर एक जीव के संग वो उनके उसके हृदय में रहते हैं, देखिए इतना देखभाल करते हैं वो, जहां की जीव भी विरुद्ध जा चुका है भगवान का। और कौन से पॉइंट सुने आपने, बलि महाराज ने जैसे शुक्राचार्य का त्याग दिया वैसे भगवान के विरोध जो भी करते हैं उनका त्याग वैसे करना चाहिए। ठीक, एग्जैक्टली पॉइंट हमने क्या बताया कि जो आपको भगवान के से दूर ले जाना चाहते हैं उनका त्याग करना चाहिए। त्याग करना चाहिए मतलब क्या, उनका संग ज्यादा नहीं करना चाहिए। उनका संग करना चाहिए जो हमें भगवान के करीब ले जाते हैं, जिनका संग करने से भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था हमारी बढ़ जाती है, वैसा संग करना चाहिए। और कोई बात सोचिए। हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक नहीं आया था। हाँ सारे, हाँ हाँ जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल डालने से सारे वृक्ष भर में पानी फैल जाता है, सारे अंगों को पानी जल मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम देवी देवताओं की सेवा करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, आप इतना लेट रिएक्शन क्यों आता है, इस पर आपको फट करके बोलना चाहिए, मतलब आप सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। नहीं, सब लोग चुस्त एकदम सुस्त हैं, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सारे ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। ये भी सबको याद रखना चाहिए दृष्टांत, ठीक है। इसलिए सभी को क्या करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों को प्रसन्न करना। और वैष्णवों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कृष्ण के पास उनको ले जाने से, और खुद भी हम जब कृष्ण के पास जाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबको अच्छी तरह से जाप करना चाहिए, किताबों का अध्ययन करना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए।